अध्याय 6 शेत और हनोक। यह अध्याय उत्पत्ति 4 आयत 25 से 6 आयत 2 पर आधारित है। आदम को एक और पुत्र दिया गया जिसे धर्म संबंधी जन्मसिद्ध अधिकार और पवित्र प्रतिज्ञा का उत्तराधिकारी होना था। इस पुत्र को दिए गए नाम शेत का अर्थ था नियुक्त या इनाम, क्योंकि उसकी मां ने कहा, परमेश्वर ने मेरे हाबिल के स्थान पर, जिसको कैन ने घात किया, एक और वंश ठहरा दिया। शेत का डील डॉल कैन और हाबिल से अधिक प्रभावशाली था और आदम के अन्य पुत्रों के तुल्य शेत और आदम में अधिक समानता थी। हाबिल का अनुसरण करते हुए वह एक गुणवान पुरुष था, लेकिन उसने भी कैन से ज्यादा स्वाभाविक अच्छाई नहीं पाई। आदम की सृष्टि के बारे में कहा जाता है, परमेश्वर ने उसे अपने स्वरूप में बनाया, पर पतन के पश्चात मनुष्य ने पुत्र को जन्म दिया अपने स्वरूप में, अपनी तरह। आदम की सृष्टि निष्पाप रूप में हुई थी, परमेश्वर के स्वरूप में, लेकिन शेत को कैन की तरह अपने माता पिता का पतित स्वभाव विरासत में मिला, लेकिन उसने भी उद्धारकर्ता का ज्ञान और धार्मिकता की शिक्षा ग्रहण की। पवित्र अनुग्रह द्वारा वह परमेश्वर का आदर सत्कार करता था और उसने सृष्टिकर्ता की आज्ञा मानने और उसका आदर करने हेतु पापी मनुष्यों का मन परिवर्तन करने के लिए श्रम किया, जैसा कि हाबिल भी जीवित होने पर करता। और शैतान के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। निष्ठावानों ने पहले भी परमेश्वर की आराधना की थी, लेकिन जनसंख्या के बढ़ने पर दो वर्गों के बीच भिन्नता और स्पष्ट हो गई। एक की ओर से परमेश्वर के प्रति प्रत्यक्ष निष्ठा की अभिव्यक्ति थी और दूसरे की ओर से घृणा और अवज्ञा का भाव प्रदर्शित होता था। पतन से पूर्व हमारे प्रथम अभिभावक अदन में स्थापित किए हुए सबत का पालन करते थे और अदन की वाटिका से निष्कासित होने के बाद भी उसका अनुपालन करते रहे। उन्होंने अवज्ञा के कड़वे फलों का अनुभव किया था और सीखा था, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का तिरस्कार करने वाला आज नहीं तो कल सीखेगा कि ईश्वरीय आज्ञाएं पवित्र और अपरिवर्तनीय हैं और आज्ञा उल्लंघन की दंडाज्ञा निश्चय ही दी जाएगी। आदम के सभी बाल बच्चों ने, जो परमेश्वर के प्रति निष्ठावान थे, सबत को मान्यता दी, लेकिन कैन और उसके वंश ने परमेश्वर के विश्राम दिन का आदर नहीं किया। उन्होंने श्रम और विश्राम दिन का आदर नहीं किया। उन्होंने श्रम और विश्राम का समय स्वयं निर्धारित किया और परमेश्वर की सुस्पष्ट आज्ञा का अपमान किया। परमेश्वर द्वारा शापित होने के पश्चात कैन अपने पिता के परिवार से अलग हो गया। पहले उसने किसान का व्यवसाय चुना था और अब उसने एक शहर स्थापित किया और उसे अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम दिया। वह परमेश्वर की उपस्थिति से दूर चला गया था। पुनः स्थापित अदन संबंधित प्रतिज्ञा को उसने अस्वीकार कर दिया और पाप से शापित धरती में अपनी संपत्ति और आनंद को ढूंढने निकल पड़ा था। इस तरह वो मनुष्यों के उस वर्ग का मुखिया बन गया जो इस संसार के देवता की आराधना करते हैं। उसके वंशजों ने सांसारिक व वस्तुगत प्रगति संबंधित विषयों में विशिष्टता पाई, लेकिन वे परमेश्वर के प्रति उदासीन थे और मानव के लिए उसके उद्देश्यों के विरुद्ध थे। कैन ने सबसे पहले हत्या का अपराध किया था और लेमेक, जो पांचवीं पीढ़ी का था, उसने अपराध की सूची में बहुविवाह की प्रथा को जोड़ दिया और अहंकारी उपेक्षा पूर्ण होने के बावजूद परमेश्वर को सिफत इसलिए स्वीकार किया कि वो कैन से संबंधित प्रतिशोध से अपनी सुरक्षा का आश्वासन पा सके। हाबिल ने चारागाही जीवन बिताया था और वो तंबू में रहता था। शेत के वंश ने भी ऐसा ही किया, क्योंकि स्वयं को पृथ्वी पर अजनबी और तीर्थयात्री मानते हुए वे एक श्रेष्ठतर पवित्र देश की प्रतीक्षा में थे। इब्रानियों 11:13-16। कुछ समय तक दोनों वर्ग अलग रहे। अपने वास से फैलकर कैन का कुल वहां तितर-बितर हो गया, जहां शेत के वंशज रहा करते थे। दूसरे वर्ग पहले वर्ग के दुष्प्रभाव से बचने के लिए पहाड़ों में चला गया और वहीं पर बस गया। जब तक वे अलग रहे, वे पवित्रता में परमेश्वर की आराधना करते रहे, लेकिन समय बीतने पर धीमे धीमे वे घाटी के निवासियों के साथ मेलजोल बढ़ाने लगे। इस संगति का परिणाम अत्यंत बुरा हुआ। परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर थीं। शेत के पुत्र कैन के वंशजों की पुत्रियों की सुंदरता से आकर्षित होकर उनके साथ अंतरजातीय विवाह के बंधन में बंध गए, जिससे परमेश्वर अप्रसन्न हुआ। उन प्रलोभनों के माध्यम से जो लगातार उनके सामने थे, परमेश्वर के आराध्य पाप में पड़ गए और अपने पवित्र चरित्र को खो बैठे। दुष्टों की संगति में वे भी भावनाओं और कर्मों में उन्हीं की तरह हो गए। सातवीं आज्ञा के प्रतिबंध की उपेक्षा कर उन्होंने स्वयं की इच्छा अनुसार अपने लिए पत्नियों का चयन किया। शेत के पुत्र कैन के रास्ते पर चलने लगे। उन्होंने सांसारिक संपन्नता और भोग विलास में अपने मन को स्थिर कर दिया और परमेश्वर की आज्ञाओं की उपेक्षा की। पुरुष अपने ज्ञान में परमेश्वर को स्थान नहीं देना चाहते थे। वे व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका मूर्ख मन अंधकारपूर्ण हो गया। रोमियो 1:21। इस कारण परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। पाप धरती पर घातक कोड़ की तरह फैल गया। लगभग 1000 वर्षों तक आदम मनुष्यों के बीच पाप के परिणामों का साक्षी बनकर रहा। बड़ी निष्ठा से वो पाप के समुद्र को बांधने का प्रयत्न करता रहा। उसे आदेश दिया गया था कि वो अपने वंशजों को परमेश्वर के बताए मार्ग की शिक्षा दे, और उसने अपने वंश के लिए परमेश्वर द्वारा प्रकाशित बातों को ध्यानपूर्वक संभाल कर रखा था और हर पीढ़ी के समक्ष दोहराया था। नवी पीढ़ी तक अपने बच्चे व उनके बच्चों को उसने अदन में मनुष्य के पवित्र और खुशहाल निवास का वर्णन किया, उसके पतन के इतिहास को दोहराया। उसने उन्हें उन विपदाओं के बारे में बताया जिनके द्वारा परमेश्वर ने उन्हें उसके नियमों का गंभीरता से आज्ञा पालन करने की आवश्यकता के बारे में सिखाया और उनके उद्धार हेतु अनुग्रहपूर्ण प्रयोजनों को समझाया। लेकिन फिर भी कुछ ही लोगों ने उसकी बातों पर ध्यान दिया। अधिकांशतः उसे उस पाप के लिए उलाहना दी जाती थी जिसके कारण उसके वंशजों पर आपदाएं आईं। आदम का जीवन दुख, दीनता और पश्चाताप का था। अदन को छोड़ने पर मृत्यु के विचार ने उसे भयभीत कर दिया। मानव परिवार में मृत्यु की वास्तविकता से उसका परिचय तब हुआ जब उसका पहलौठा पुत्र कैन अपने ही भाई का हत्यारा बन गया। स्वयं के पाप के लिए घोर पश्चाताप से भरा हाबिल की मृत्यु और कैन के तिरस्कार से शोकाकुल आदम व्यथा की पराकाष्ठा से झुक गया। वह साक्षी था उस भ्रष्टाचार का जिसके कारण जल प्रलय द्वारा संसार का विनाश होना निश्चित था। हालांकि सृजनहार द्वारा दी गई मृत्यु की दंडाज्ञा प्रारंभ में भयानक प्रतीत हुई, लेकिन लगभग 1000 सालों तक पाप के परिणामों को देखकर उसे लगा कि दुख और पीड़ा से ग्रस्त जीवन का अंत करने में परमेश्वर की दयालुता दिखाई देती है। जल प्रलय पूर्व संसार की दुष्टता के बावजूद उस युग को, जैसा कि माना जाता है, नासमझी और वहशीपन का युग नहीं कहा जा सकता। मानव को नैतिक और बौद्धिक उपलब्धियों के उत्कृष्ट स्तर को प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया गया था। वे शारीरिक और मानसिक क्षमता के स्वामी थे और उनके पास धार्मिक और विज्ञान संबंधी ज्ञान प्राप्त करने के अतुल्य सुअवसर थे। यह धारणा रखना गलत होगा कि उनकी बुद्धि देर से परिपक्व होती थी, क्योंकि वे बहुत वर्षों तक जीवित रहते थे। उनकी मानसिक योग्यता जल्दी विकसित होती थी और परमेश्वर का भय मानने वाले और उसकी इच्छा के साथ सामंजस्य रखने वाले ज्ञान और विवेक में जीवन भर बढ़ते रहते थे। यदि हमारे युग के उत्कृष्ट विद्वानों की तुलना जल प्रलय पूर्व के सम आयु पुरुषों के साथ की जाए तो वे शारीरिक और मानसिक क्षमता में बहुत कम प्रतीत होंगे। आयु के घटने के साथ मनुष्य की शारीरिक शक्ति व मानसिक योग्यता भी कम हो गई है। अब पुरुष 20 से 50 वर्ष अध्ययन करने में व्यतीत करते हैं और संसार उनकी उपलब्धियों की प्रशंसा से भर जाता है। लेकिन तुलना करने पर उन मनुष्यों की उपलब्धियां, जिनकी मानसिक और शारीरिक योग्यताओं का सदियों तक विकास हुआ, वर्तमान उपलब्धियां बहुत सीमित है। यह सच है कि आधुनिक युग के लोग उनके पूर्वजों की उपलब्धियों से लाभान्वित है। निपुण बुद्धि पुरुष, जिन्होंने योजना बनाई, अध्ययन किया और लिखा, अपनी कृतियों को अनुसरण करने वालों के लिए छोड़ गए हैं। लेकिन इस संदर्भ में भी, जहां तक मानव ज्ञान का संबंध है, प्राचीन युग के लोग अधिक लाभान्वित थे। कई सदियों तक उनके मध्य वह था जिसे परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया था, जिसे स्वयं सृजनहार ने अच्छा कहा था। वह पुरुष जिसे परमेश्वर ने वस्तुगत संसार से संबंधित संपूर्ण शिक्षा दी थी। आदम ने सृष्टि का इतिहास सृजनहार से सीखा था। 9 सदियों की घटनाओं का वह स्वयं साक्षी था और उसने अपना ज्ञान अपने वंशजों को प्रदान किया। जल प्रलय पूर्व के वासियों के पास पुस्तकों का अभाव था और न ही उनके पास लिखित अभिलेख थे। उत्तम शारीरिक और मानसिक उत्साह के साथ उनके पास उत्तम स्मरण शक्ति थी, जो उन्हें बताई गई बातों को पूर्णतया ग्रहण करने में और याद रखने में सक्षम बनाती थी, और वे ज्ञान को उसी अवस्था में अपने वंशजों को प्रदान करते थे। सैकड़ों वर्षों तक 7 पीढ़ियां इस धरती पर एक ही समय जीवित थीं, और इस कारण उनके पास एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करने का और सबके ज्ञान और अनुभव से हर एक को लाभान्वित करने का अवसर था। परमेश्वर के कामों द्वारा उसके ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उस समय के मनुष्यों के पास अतुल्य अनुकूल परिस्थितियां थीं। इस तरह धार्मिक अंधकार का युग न होकर वह उत्तम प्रकाश का युग था। संपूर्ण जगत के पास आदम से शिक्षा प्राप्त करने का सुअवसर था, और परमेश्वर से डरने वालों के पास मसीह और स्वर्गदूतों के रूप में शिक्षक थे, और परमेश्वर की वाटिका में उनके पास सत्य का मूक साक्षी था, जो कई सदियों तक मनुष्य के बीच रहा। अदन की वाटिका के स्वर्गदूतों द्वारा संरक्षित द्वार पर परमेश्वर की महिमा प्रकट हुई, और सर्वप्रथम आराध्य वहां आए। यहां पर उनकी वेदियों को उठाया गया और उनकी भेंटों को अर्पण किया गया। यहीं पर कैन और हाबिल अपने चढ़ावे लेकर आए, और परमेश्वर ने उनसे संपर्क की स्वीकृति दी। संदेहवाद भी अदन के अस्तित्व को नकार नहीं सका, क्योंकि वो दृश्यमान था और उसके द्वार पर स्वर्गदूतों का पहरा था। सृष्टि का क्रम, वाटिका का प्रयोजन, मनुष्य की नियति से जुड़ा वहां के दोनों वृक्षों का इतिहास निर्विवाद तथ्य थे। परमेश्वर का अस्तित्व और श्रेष्ठ अधिकार, व्यवस्था का दायित्व, वे तथ्य थे जिन पर आदम की उपस्थिति में मनुष्य कम संदेह करता था। प्रचलित दुष्टता के बावजूद पवित्र व्यक्तियों की एक श्रेणी थी जो परमेश्वर की संगति द्वारा उदात्त और उन्नत किए हुए ऐसे रहते थे मानो स्वर्ग की संगति में हो। वे श्रेष्ठतर बुद्धि और प्रशंसनीय उपलब्धियों के पुरुष थे। उनके सामने एक महान और पवित्र लक्ष्य था, धार्मिकता के चरित्र को विकसित करना, और केवल अपने समय के लोगों को ही नहीं वरन भविष्य की पीढ़ियों को भी धार्मिकता का पाठ पढ़ाना। पवित्र शास्त्र में केवल सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषयों का ही वर्णन है, लेकिन हर युग में परमेश्वर के निष्ठावान साक्ष्य व हृदय से सच्चे उपासक हुए हैं। हनोक के लिए लिखा गया है कि 65 वर्ष के होने पर उसको एक पुत्र पैदा हुआ, तत्पश्चात वो 300 वर्ष परमेश्वर के साथ साथ चला। इन प्रारंभिक वर्षों में हनोक ने परमेश्वर से प्रेम रखा और उसका भय माना और उसकी आज्ञाओं का पालन किया। वो पवित्रों की श्रेणी में से था जो सच्चे विश्वास के संरक्षक थे और स्त्री के पुत्र के अग्रगामी थे। आदम के द्वारा उसने पतन की निराशाजनक कहानी और परमेश्वर की प्रतिज्ञा में देखे गए अनुग्रह की कहानी सुनी और उसे आने वाले मुक्तिदाता में विश्वास हो गया। लेकिन पहले पुत्र के जन्म पश्चात हनोक अनुभव की ऊंचाइयों पर पहुंचा और परमेश्वर के साथ उसका घनिष्ठ संबंध बना। उसे परमेश्वर की संतान जैसे स्वयं के कर्तव्य और दायित्व का स्पष्टता से आभास हुआ। जब उसने पिता के लिए बालक का प्रेम देखा, उसके संरक्षण में उसका सरल विश्वास देखा, जैसे उसने स्वयं अपने पहलौठे पुत्र के लिए हृदय की ललकती नम्रता को अनुभव किया, उसने पुत्र के रूप में दिए गए उपहार में परमेश्वर के अद्भुत प्रेम का बहुमूल्य पाठ पढ़ा और उस विश्वास को पहचाना जो परमेश्वर की संतान अपने स्वर्गीय पिता में कर सकती है। मसीह द्वारा परमेश्वर का असीमित अथाह प्रेम उसके लिए रात दिन मनन का विषय बन गया, और अपनी आत्मा के संपूर्ण उत्साह से वो उस प्रेम को उन लोगों को बताने के लिए प्रयत्न करने लगा जिनके बीच वो रहता था। हनोक का परमेश्वर के साथ चलना अवचेतन अवस्था या परिकल्पना में नहीं था, वो अपने दैनिक जीवन के हर कर्तव्य में उसके साथ चलता था। संसार को छोड़कर वो साधु नहीं बना, क्योंकि उसे इस संसार में परमेश्वर के लिए एक कार्य करना था और परिवार में और लोगों के साथ संवाद करने में एक पिता और पति, एक दोस्त, एक नागरिक के रूप में वो परमेश्वर का अडिग और अविचलित होने वाला सेवक था। उसके हृदय और परमेश्वर की इच्छा में सामंजस्य था, क्योंकि यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत न हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? आमोस 3:3। ये पवित्र भ्रमण वो 300 वर्ष तक करता रहा। कुछ मसीही, यदि वे जानते कि उनके पास समय कम है या प्रभु का आना जल्द है, तो भी हनोक से अधिक गंभीर और समर्पित नहीं होते। लेकिन समय के साथ हनोक का विश्वास दृढ़ होता चला गया और उसका प्रेम और अधिक बढ़ गया। हनोक विस्तृत ज्ञान और अनोखी और अत्यधिक सभ्य विवेक का स्वामी था। उसको परमेश्वर ने असाधारण रहस्योद्धाटनों से सम्मानित किया था, लेकिन फिर भी स्वर्ग के साथ निरंतर संपर्क में रहकर ईश्वरीय महानता और सिद्धता के आभास को निरंतर ध्यान में रखकर वो सबसे दीन मनुष्यों में से एक था। जितना अधिक घनिष्ठ उसका परमेश्वर से संबंध था, उतना ही गहरा आभास उसे स्वयं की क्षीणता और असिद्धता का था। अधर्मी लोगों की बढ़ती हुई दुष्टता से दुखी और इस डर से कि उनकी श्रद्धाहीनता के कारणवश परमेश्वर के प्रति उसकी आस्था कम न हो जाए, वो उनकी संगति से दूर रहने लगा और स्वयं को ध्यान और प्रार्थना को समर्पित कर वो एकांत में अधिक समय व्यतीत करने लगा। इस प्रकार परमेश्वर की इच्छा को और स्पष्टता से ज्ञात करने के लिए, ताकि वो उसकी इच्छा को पूरा कर सके, वो परमेश्वर की सेवा में जुट गया। उसके लिए प्रार्थना आत्मा की श्वास समान थी। वो स्वर्ग के वातावरण में रहता था।
स्वर्गदूतों के माध्यम से परमेश्वर ने हनोक को जल प्रलय द्वारा संसार का विनाश करने का उद्देश्य ज्ञात कराया और उद्धार की योजना को भी स्पष्ट किया। भविष्यवाणी की आत्मा द्वारा उसने हनोक को जल प्रलय के पश्चात वास करने वाली पीढ़ियां दिखाई और यीशु के दूसरे आगमन और संसार के अंत से संबंधित घटनाओं को भी दिखलाया। मृतकों के संबंध में हनोक अशात था। उसे लगता था कि धर्मी और दुष्ट दोनों ही मिट्टी को प्राप्त होंगे और यही उनका अंत होगा। वह सिद्ध मनुष्यों के मृत्योपरांत के जीवन की कल्पना नहीं कर सकता था। भविष्य सूचक दर्शन में उसे मसीह की मृत्यु संबंधित निर्देश दिए गए और उसे दिखाया गया कि स्वर्गदूतों सहित यशस्वी येशु अपने लोगों को मृत्यु से छुटकारा दिलाने आएगा। उसने यीशु के दूसरे आगमन के समय के संसार की भ्रष्ट अवस्था को देखा कि उस समय की पीढ़ी भी घमंडी, ढीठ और स्वेच्छाधारी होगी, जो अद्वितीय परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार करेगी और उसकी आज्ञाओं को कूचल देगी और पश्चाताप को तुच्छ समझेगी। उसने धर्मियों को महिमा और प्रतिष्ठा का मुकुट पहने देखा और दुष्टों को परमेश्वर की उपस्थिति से निष्कासित आग से नष्ट होते देखा। हनोक धार्मिकता का प्रचारक बन गया और परमेश्वर द्वारा दिए गए ज्ञान को लोगों के साथ बांटने लगा। परमेश्वर का भय मानने वाले उसकी शिक्षा और प्रार्थना के भागीदार होने के लिए इस धर्मी पुरुष के पास आए। उसने सार्वजनिक तौर से भी श्रम किया। उसने उन सभी तक जो चेतावनी के कथन को सुनने के इच्छुक थे, परमेश्वर के संदेश को पहुंचाया। उसका प्रयत्न शेत के वंश तक ही सीमित नहीं था। उस क्षेत्र में भी कैन परमेश्वर की उपस्थिति से भाग गया था। परमेश्वर के इस भविष्यवक्ता ने उन अद्भुत दृश्यों का वर्णन किया जो उसने दर्शन में देखे थे। देखो, प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया कि सबका न्याय करे और सब भक्तिहीनों को उनकी भक्ति के सब कामों के विषय में जो उन्होंने भक्तिहीन होकर किए हैं दोषी ठहराया। यहूदा 14:15। वह पाप का निडरता से आक्षेप करने वाला था। अपने समय के लोगों को मसीह में परमेश्वर के प्रेम का प्रचार करते हुए और उनसे बुराई का रास्ता छोड़ने का आवेदन करते हुए उसने प्रचलित दुष्टता की निंदा की और अपनी पीढ़ी के लोगों को चेतावनी दी कि अपराधी का न्याय अवश्य होगा। हनोक के माध्यम से यीशु का पवित्र आत्मा बोलता था। वह आत्मा केवल प्रेम, दयालुता और निवेदन की उक्तियों में ही प्रकट नहीं होता। पवित्र मनुष्य केवल सुखदाई बातें ही नहीं बोलते। परमेश्वर अपने संदेश वाहकों के होठों पर और हृदय में उन सच्चाइयों को लाता है जो दो धार वाली तलवार के समान संवेदनशील और कटु होती है। परमेश्वर का सामर्थ्य जो उसके सेवक के द्वारा काम करता था, उसके सुनने वालों को अनुभव हुआ। कुछ ने चेतावनी को गंभीरता से लिया और अपने पापों को त्याग दिया, लेकिन अधिकांश सुनने वालों ने इस महत्वपूर्ण संदेश का उपहास किया और दुष्टता के तौर तरीकों में निडरतापूर्वक बढ़ते गए। ऐसा ही संदेश परमेश्वर के दासों को अंत समय में संसार में फैलाना है, और सुनने वाले उस पर अविश्वास करेंगे और उसका उपहास करेंगे। जल प्रलय पूर्व संसार ने उसकी चेतावनी के संदेश को अस्वीकृत किया जो परमेश्वर के साथ चलता था। इसी प्रकार अंतिम पीढ़ी परमेश्वर के संदेश वाहकों की चेतावनियों को तुच्छ समझेंगे। सक्रिय श्रम के जीवन में भी हनोक ने परमेश्वर के साथ अपने संपर्क को दृढ़ता से बनाए रखा। जितना महत्वपूर्ण और अत्यावश्यक उसका श्रम होता, उतनी ही प्रायः और निष्ठावान उसकी प्रार्थना होती। कई बार निश्चित काल के लिए वह अपने आप को समाज से अलग रखता रहा। कुछ समय लोगों के बीच उनको निर्देश और उदाहरण से लाभान्वित करने का प्रयत्न करने के बाद वह पवित्र ज्ञान, जो केवल परमेश्वर दे सकता है, कि भूख और प्यास में एकांतवास में चला जाता। इस प्रकार परमेश्वर के साथ संपर्क में रहने से उसमें और अधिक पवित्र छवि प्रतिबिंबित होने लगी। उसके मुख पर पवित्र प्रकाश का तेज था, जैसे कि मसीह के मुख पर होता है। जब वह धार्मिक समागम प्राप्त करके आता था, उसकी मुखाकृति पर स्वर्ग के प्रभाव को अधर्मी भी अचरज से देखते थे।
मनुष्य की दुष्टता इतनी बढ़ गई कि उनके विरुद्ध विनाश की घोषणा की गई। जैसे जैसे वर्ष व्यतीत होते गए, मानव के अपराध बोध का समुद्र गहरा होता गया और ईश्वरीय न्याय के बादल गहराते गए। फिर भी हनोक, विश्वास का साक्षी, प्रतिशोध के वज्रपात के स्थगन के लिए, अपराध बोध के प्रवाह को पीछे लौटाने के लिए प्रयत्नशील रहा और लोगों को निवेदन करते हुए चेतावनी देता रहा। हालांकि पापी भोगविलास के प्रेमी मनुष्यों ने उसकी चेतावनियों को महत्व नहीं दिया, पर हनोक के पास परमेश्वर द्वारा स्वीकृत साक्ष्य था और वो प्रचलित बुराई के विरुद्ध निष्ठावान होकर लड़ता रहा, जब तक कि परमेश्वर ने उसे पापमय संसार से हटाकर स्वर्ग के निर्मल आनंद में स्थान दिया। उस पीढ़ी के मनुष्यों ने उसकी मूर्खता का उपहास किया था, जिसने सोने और चांदी को जमा करने की चेष्टा नहीं की थी और ना ही संसार में संपत्ति इकट्ठा करने का प्रयत्न किया था। पर हनोक का हृदय अनंत धन संग्रह पर केंद्रित था। उसने स्वर्गीय नगर का दर्शन किया था। उसने सीयोन के बीच राजा को अपने तेज में देखा था। उसका विवेक, उसका हृदय, उसका वार्तालाप सब स्वर्ग में केंद्रित थे। जितनी अधिक प्रचलित दुष्टता थी, उतनी ही ज्यादा गंभीर उसकी परमेश्वर के घर की लालसा थी। पृथ्वी पर वास करते हुए भी विश्वास द्वारा वो प्रकाश के क्षेत्र में रहता था। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। मत्ती 5:8। 300 वर्ष तक हनोक आत्मा की शुद्धि का प्रयास कर रहा था, ताकि वो स्वर्ग के साथ सामंजस्य बना सके। 3 सदियों तक वो परमेश्वर के साथ चला था। दिन प्रतिदिन घनिष्ठ मेल मिलाप की उसकी लालसा रही थी और परमेश्वर के साथ उसके समन्वय में निकटता आई, जब तक कि परमेश्वर ने उसे अपने पास ले लिया। वो अलौकिक संसार के द्वार पर खड़ा था। उसके और पवित्रों के देश के बीच में केवल 1 सीढ़ी बाकी थी और अब मुख्य द्वार खुल गया। जो भ्रमण वो परमेश्वर के साथ पृथ्वी पर करता था, वैसे ही करता रहा, और उसने पवित्र नगर के फाटकों को पार किया। स्वर्ग में प्रवेश पाने वाला वो पहला मनुष्य था। उसका अभाव धरती पर अनुभव किया गया। प्रतिदिन निर्देश और चेतावनी देने वाली आवाज के अभाव को महसूस किया गया। कुछ धर्मियों ने व कुछ दुष्टों ने उसके प्रस्थान की देखा था, और इस आशा में कि उसे उसी के किसी एकांत स्थान में पहुंचा दिया गया होगा, उससे प्रीति रखने वाले उसे खोजने का प्रयत्न करने लगे, जैसे आने वाले समय में भविष्यवक्ताओं के पुत्रों ने एलिया को ढूंढा था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्होंने बताया कि वो नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। हनोक के रूपांतरण से परमेश्वर ने एक सीख देनी चाही। ये आशंका थी कि आदम के पाप के भयावह परिणामों के कारण मनुष्य निराशा से भर जाएगा। कई इस भावना को अभिव्यक्त करने को तैयार थे। परमेश्वर का भय मानना और उसके नियमों का पालन करना व्यर्थ है, क्योंकि पूरे वंश पर भारी शाप पड़ा है और सब मृत्यु के पात्र है। लेकिन जो निर्देश परमेश्वर ने आदम को दिए, जो शेत द्वारा दोहराए गए और हनोक द्वारा समझाए गए, उन निर्देशों ने निराशा और अंधकार को दूर किया और मनुष्य को यह आशा दी कि जैसे आदम से मृत्यु आई, उसी तरह उद्धारकर्ता के माध्यम से जीवन और अमरता आएगी। शैतान मनुष्य को आग्रहपूर्वक विश्वास दिला रहा था कि न तो धर्मी मनुष्यों के लिए पुरस्कार है और न ही दुष्टों के लिए दंड, और मनुष्य का परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना असंभव है। लेकिन हनोक के संबंध में परमेश्वर कहता है कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। इब्रानियों 11:6
वो बताता है कि आज्ञा पालन करने वालों के लिए वो क्या करेगा। मनुष्य को सिखाया गया कि परमेश्वर की व्यवस्था को मानना संभव है। पापी और भ्रष्ट लोगों के बीच रहकर भी वे परमेश्वर के अनुग्रह से प्रलोभन में नहीं पड़ेंगे और वे शुद्ध और पवित्र हो जाएंगे। उन्होंने उसके उदाहरण में ऐसे जीवन का परमानंद देखा और उसका रूपांतरित होना और उठा लिया जाना। उसकी मृत्योपरांत संबंधित भविष्यवाणी आज्ञाकारी मनुष्यों के लिए आनंद महिमा और अनंत जीवन का पुरस्कार, और अपराधी के लिए दंडाज्ञा, दरिद्रता और मृत्यु के सत्य का प्रमाण थी। इब्रानियों 11:5 में लिखा है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे, और उसके उठाए जाने से पहले उसकी ये गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। अपनी दुष्टता के कारण विनाश के लिए अभिशप्त संसार के बीच हनोक ने परमेश्वर के साथ इतनी घनिष्ठ संगति का जीवन व्यतीत किया कि उसे मृत्यु की शक्ति से पराजित होने की अनुमति नहीं दी गई। इस भविष्यवक्ता का पवित्रतापूर्ण चरित्र प्रतिनिधित्व करता है, पवित्रता की उस अवस्था का जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए। प्रकाशित वाक्य 14:3 मनुष्यों को मसीह के दूसरे आगमन के समय प्राप्त होगी। उस समय जल प्रलय के पूर्व के संसार के समान दुष्टता प्रचलित होगी। मायावी विचारधारा की शिक्षा और स्वयं के भ्रष्ट हृदय के प्रबोधनों का अनुसरण करते हुए मनुष्य स्वर्ग के अधिकार के प्रति विद्रोह करेंगे। लेकिन हनोक के समान परमेश्वर के लोग उसकी इच्छा के प्रति अनुकूलता और हृदय की पवित्रता पाने का प्रयत्न उस समय तक करेंगे जब तक उनमें मसीह का स्वरूप प्रतिबिंबित न हो जाए। हनोक समान वे संसार को मसीह के दूसरे आगमन की और अपराधियों के न्याय की चेतावनी देंगे और अपनी धर्म से भरी बातचीत और पवित्र उदाहरण से अधर्मी मनुष्यों के अपराधों की निंदा करेंगे। जैसे कि जल प्रलय से पहले हनोक को स्वर्ग में जीवित अवस्था में उठा लिया गया था, ऐसे ही जीवित धर्मी मनुष्यों को अग्नि द्वारा विनाश से पहले धरती पर से उठा लिया जाएगा। प्रेरित कहता है, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक झपकते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा उस समय ललकार, और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलेंगे, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो।